नमस्कार भारत 15 जून दिन गुरुवार, मैं हूं प्रभात पांडे। लंदन के 24 मंजिला ग्रेनफेल टावर में क्यों लगी आग, अब तक बना हुआ है रहस्य। क्या भीड़ के गुस्से को भड़काने का काम कर रहा है सोशल मीडिया, भीड़ तंत्र पर हमारी खास सीरीज की अगली कड़ी।
इसमें कंट्रीब्यूशन व्हाट्सएप का ज्यादा रहता है, क्योंकि फेसबुक पे तो फिर भी कुछ चीजें रिकॉर्ड रहती हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, दूसरे लोग देख सकते हैं, क्लोज ग्रुप होगा फिर भी वो लीक हो सकता है स्क्रीनशॉट।
दुनिया जहान में बात करेंगे चीन और ताइवान के उलझे रिश्तों की, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, प्रशंसकों का जश्न। लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बहुमंजिला इमारत ग्रीनफेल टावर में लगी आग में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस हादसे में करीब 70 लोग घायल हो गए हैं, इनमें से 18 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 24 मंजिला इमारत में आग को बुझाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत चलती रही और झुलसी हुई इमारत में राहत टीमें काम पर अभी भी लगी हुई हैं। ग्रेनफेल टावर के पास रहने वाले लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर मुश्ताक लशारी सीबी ने बीबीसी को आंखों देखा हाल बताया।
6:01 पे हर तरफ शोर शराबा हुआ, हेल्प हेल्प फायर। उस वक्त हमने देखा कि एक फ्लैट के एक कोने में, जो हमारे फ्लैट से दूसरी तरफ है, वहाँ आग लगी हुई है। तो हम जाहिर है बाहर निकले और हमने सब लोगों को चीखना शुरू कर दिया कि गेट आउट। जो हमारे वाकिफ थे उनको हमने फ़ोन करने शुरू कर दिए, जिनको हम जानते हैं। लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए।
ये थे मुश्ताक लशारी सीबी। लंदन की इस इमारत में भीषण आग की घटना के बाद ब्रिटेन में इस तरह की कई बहुमंजिला इमारतों में फायर चेक का आदेश दिया गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी के डिपो में गोलीबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। सैन फ्रांसिस्को में पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। यूपीएस के प्रवक्ता स्टीव कॉट ने कहा है कि एक कर्मचारी ने ही अपने साथियों पर गोलियां चलाईं और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि ये आतंकवादी हमला नहीं था। इससे पहले अमेरिका के वर्जीनिया में बास्केटबॉल के एक अभ्यास मैच के दौरान एक टॉप रिपब्लिकन सांसद और उनके सहयोगियों को गोलियां चलाने वाले संदिग्ध हमलावर जेम्स हॉजकिंसन को भी मार गिराया गया है। जांच में सामने आया है कि ये संदिग्ध हमलावर कई रिपब्लिकन विरोधी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा था और राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल रहे बर्नी सैंडर्स का समर्थक था। बर्नी सैंडर्स ने इस हमले की निंदा की है।
I have just been informed that the alleged shooter at the Republican
Bernie Sanders कह रहे थे कि मुझे बताया गया है कि रिपब्लिकन टीम की बेसबॉल प्रैक्टिस में हमला करने वाला संदिग्ध कथित तौर पर मेरे चुनाव प्रचार में शामिल हुआ था। इस घिनौने कृत्य से मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। मैं ये साफ कर दूं कि हमारे समाज में किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, और कड़े से कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। ये थे बर्नी सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस का कहना है कि शहर के बीच में स्थित एक होटल और रेस्तरां में विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी से आत्मघाती हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों के साथ चरमपंथियों के बीच गोलीबारी भी हुई। पुलिस ने बताया है कि चरमपंथियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया। इस्लामिक गुट अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर लगे प्रतिबंध में ढील देने से रोकने के लिए लाए गए एक विधेयक के पक्ष में बहुमत में वोटिंग की है। इससे पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के लिए रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहिन ने कहा कि इस कानून से रूस पर उसके कृत्यों के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। अमरीकी चुनाव में कथित दखल के आरोप से रूस इनकार करता रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं प्रभात पांडे। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि लंदन के 24 मंजिला ग्रेनफेल टावर में लगी आग पर कई घंटों के बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार देर रात लगी इस आग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मैंने इस घटना के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ी देर पहले लंदन में मौजूद BBC संवाददाता विनीत खरे से बात की।
प्रभात, अभी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो तादाद है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 18 के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति क्रिटिकल है। और जैसे जैसे, क्योंकि अभी कुछ देर तक जब मैं देख पाया था तो अभी भी कुछ हिस्सों में आग जल रही है, तो अभी भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। उसके बाद जो अग्निशमन के अधिकारी हैं फ्लोर बाय फ्लोर जाएंगे, मामले का जायजा लेंगे, और माना जा रहा है कि उसमें भी कई लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, मिसिंग हैं। ये जो बिल्डिंग है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आग जो है आधे घंटे में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर होते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। फायर सेफ्टी रेगुलेशन को क्या फॉलो किया गया? लंदन के इतिहास में कहा जा रहा है कि इस तरह का अपने अलग तरह का एक यूनिक हादसा है। और क्योंकि लंदन में हमने पिछले देखा चरमपंथी हमले, एक के बाद एक हमले हुए हैं, उसके बाद इस तरह का हादसा हो जाना ऐसे शहर में जहां पर फायर रेगुलेशन दुनिया में सबसे स्ट्रिक्टेस्ट है, वहां पर ऐसा हादसा हो जाना, इसको लेकर अभी भी हर कोई कह रहा है कि अभी स्पेकुलेशन करना सही नहीं है।
और विनीत, आग लगने की ये घटना कई घंटे पहले हो चुकी है, उसके बाद भी असल वजह अब तक पता नहीं चल पाई है।
देखिए प्रभात, हम हिंदुस्तान में जैसे देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर बहुत सारे लोग मीडिया में भी या मीडिया के बाहर भी, अधिकारी आम लोग बड़े स्पेकुलेट करने लगते हैं भाई किस कारण से आग लगी होगी। लेकिन यहाँ ब्रिटेन में जब तक कोई एक आधिकारिक वर्जन ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है, अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं, जिसे कहना चाहिए धुआं अभी भी निकल रहा है, अधिकारी मामले की जांच करेंगे, क्यों आग लगी ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, तो जब तक उसका एक सर्टन ऑफिशियल लेवल पे कोई लाइन नहीं होगी कि भाई इस कारण से आग लगी थी जांच के बाद, तब तक कोई यहाँ पर स्पेकुलेट करना नहीं चाहता है। तो वही है, जब उस लाइन को यहाँ मीडिया भी ध्यान रखता है कि भाई जो स्पेकुलेशन है या फिर उस पर इस कारण से शायद वो लगी होगी, उस तरह से यहाँ कोई नहीं बोलता है, अभी भी क्लियर नहीं है, और जब तक उसकी जांच पूरी नहीं होती तब तक हमें शायद नहीं पता लगेगा क्या हुआ।
ये थे विनीत खरे, जो ग्रेनफेल टावर में लगी आग के बारे में जानकारी दे रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर में उत्तम वर्मा के दो भाइयों सहित तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो, या फिर राजस्थान के अलवर में पहलू खान का कत्ल, इन सब मामलों में भीड़ को उकसाने का काम सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ था। झारखंड में हाल के दिनों में भीड़ के हाथों हुई हत्याओं का मामला हो या फिर कश्मीर घाटी में तनाव, इन सब के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना गया। तो क्या सोशल मीडिया पैदा कर रहा है भीड़ तंत्र? बेकाबू भीड़ पर हमारी विशेष सीरीज की अगली कड़ी में सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये आवाजें हैं एक ऐसी ही उन्मादी भीड़ की जो देश के किसी हिस्से में कानून हाथ में लेकर अपने शिकार को खुद सजा दे रही है। ये लोगों का हुजूम है जो लाठियों और डंडों से लैस होकर सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं। इक्का दुक्का पुलिस कर्मी भी हैं जो इस भीड़ के सामने खुद को वैसा ही बेबस महसूस कर रहे हैं जैसा भीड़ का शिकार बने लोग। आखिर कौन भड़का रहा है इस भीड़ को? प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर हिंसक घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। भीड़ तंत्र भी ज्यादातर सोशल मीडिया की ही देन है। साइबर क्राइम विशेषज्ञ और वकील अनुजा कपूर कहती हैं कि सिर्फ बिना पढ़े लिखे लोग ही सोशल मीडिया के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाह का शिकार पढ़े लिखे लोग ज्यादा बन रहे हैं।
कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब सारे लोग तो नहीं, हम लोग भी तो सोशल मीडिया में बैठे हैं, आप भी हैं, तो सब लोग इस चीज से प्रभावित नहीं हो जाते। मेंटालिटी होती है जो बेसिकली इसको एक प्रोवोकेशन के तौर पर लेती है और कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करती है। अब ये जो प्रोवोकेशन है उसको पूरा कौन करता है? उसको पूरा करता है सोशल मीडिया, क्योंकि आपको खाना मिलता है, आपके दिमाग को खाना मिलता है, और जब वो खाना मिलता है तो उसका सही और गलत उपयोग नहीं देखा जाता, उसको ये देखा जाता है कि हमें एक एक्ट करना है। अब ये एक्ट ऑफ ओमिशन है और इसको पूरा करना है। अब कई लोग इसको मानते हैं, इनको ये लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है, होता है। जब आपको ये पूरा यकीन होता है अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है और उसको जो जवाब हमें देना है या उसका जो जज बनना है वो हम बने।
हालांकि साइबर क्राइम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ऐसे कानून नहीं बन पाए हैं जिनके जरिए इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। उनका मानना है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जरिए सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वालों पर नकेल नहीं कसी जा सकती है, इसके लिए और भी उपाय किए जाना जरूरी है, जिसमें पुलिस के साथ साथ दूसरे संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्मादी भीड़ ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई जाने ली और इसके खिलाफ मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों के समूहों को उन्मादी भीड़ में तब्दील कर देने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हैं नदीम अख्तर।
जो केसेस हैं इनमें रिसेंट केस जमशेदपुर का है, जिसमें 3 एक जगह लिंचिंग हुई हामिद के घर पे। उसमें बाकायदा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना गया, बच्चा चोर के नाम पे उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था, और उसमें अफवाह फैलाई गई कि इतने बच्चे गायब हो गए, अजनबी लोग आते हैं, अजनबी लोग बच्चा चुरा लेते हैं, ये करते हैं। तो ये पूरा सोशल मीडिया के जरिए, और इसमें कंट्रीब्यूशन व्हाट्सएप का ज़्यादा रहता है, क्योंकि फेसबुक पे तो फिर भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, दूसरे लोग देख सकते हैं, क्लोज ग्रुप होगा फिर भी वो लीक हो सकता है स्क्रीनशॉट। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप्स जितने भी हैं इनका बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है और अभी भी हो रहा है।
नदीम अख्तर कहते हैं कि जमशेदपुर के जुगसलाई के रहने वाले उत्तम वर्मा के भाइयों की उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या का मामला हो या पहलो खान की हत्या, इन सब में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था।
एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो जेन्युइन लोग इसमें मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं ग्रे करने की कोशिश करी जाती है। भैंस खरीदने गया लेकिन उसको भैंस अच्छी नहीं मिली तो उसने गाय खरीद ली, लेकिन जैसे ही उसने गाय खरीदी और सब उसके यहाँ अभी भी 3 गाय और भी हैं, जानवर और भी पालता है, जो जिनके नाम मैंने बताया, रिशाद के और इनके रफीक के, ये भी जानवर पालते हैं दूध के लिए। लेकिन जैसे ही ये पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं या मरने के बाद, तो कहीं कोई सिंपैथी नहीं होने पाए, कहीं कोई ये विक्टिम नहीं नजर आए, ये खुद एक्यूज नजर आए। इसके लिए एक सोशल मीडिया में बाढ़ सी आ जाती है कि वो पशु तस्कर था, फिर उसी के मैसेजेस जाएंगे, पशु तस्करी के डेटा दिए जाएंगे, सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। तो सोशल मीडिया का इसी तरह से इस्तेमाल होता है कि या तो पहले एक हेट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, फिर कोई इंसिडेंट अगर हो जाए।
पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों और लोगों को भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा पाती है क्योंकि पता ही नहीं लग पाता है कि इन सबके पीछे कौन है। उनका कहना है कि ट्विटर और फेसबुक पर अगर कुछ भड़काऊ सामग्री आती है तो फिर भी कुछ कार्रवाई करना संभव हो जाता है, जबकि व्हाट्सएप तो एक बंद समूह है जहां इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन भड़काऊ तस्वीरें या पोस्ट डाल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जीत का जश्न उनके प्रशंसकों ने कैसे मनाया, लेकिन पहले दुनिया जहान। पनामा ने ताइवान के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लिया है और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। पनामा ने कहा है कि वो ओनली वन चाइना को मान्यता देता है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। ताइवान या फिर चीन, किसी भी देश को इन दोनों में से किसी एक को ही क्यों चुनना पड़ता है? चीन और ताइवान के उलझे संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा आज के दुनिया जहान में।
दुनिया जहान।
Me dirijo a la nación el día de hoy para anunciarles que hemos tomado la decisión.
मैं राष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ कि आज 2017 से हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। पनामा के संवैधानिक राष्ट्रपति के रूप में मैं स्थितियां स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि यही देश के लिए सही रास्ता है।
पनामा के टीवी चैनल पर देश के राष्ट्रपति युआन कार्लोस वरेला घोषणा करते हुए, उधर ताइवान सरकार ने पनामा सरकार के इस फैसले पर निराशा और गुस्से का इजहार किया। ताइवान के विदेश मंत्री डेविड ली ने जवाब दिया और कहा कि पनामा ने आर्थिक फायदे के लिए ताइवान के साथ अपने रिश्तों को बेच दिया।
पनामा सरकार ने दोनों देशों के लोगों की दोस्ती को दरकिनार किया है। उन्होंने इस तथ्य की भी अनदेखी की कि ताइवान ने पनामा के समग्र विकास के लिए क्या कुछ नहीं किया।
तो कहानी ये कि पनामा ने ताइवान को छोड़ा और चीन का हाथ थाम लिया। क्या मामला सिर्फ आर्थिक नफे नुकसान का है या फिर चीन ने अपनी दबाव की रणनीति का इस्तेमाल किया है? मैंने पूछा चीन के दौरे पर गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से।
पनामा कैनाल जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, और अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा पनामा कैनाल में शिपिंग का इस्तेमाल करता है और उनको शिपिंग फी देता है। और उसके साथ साथ आपने कहा कि क्या प्रेशराइज भी कर रहा है चीन, तो पिछले कुछ वर्षों पहले चीन ने एक सेंट्रल अमेरिकन वाटरवेज प्रोजेक्ट शुरू करा जो पनामा कैनाल को चैलेंज दे सकता है और उसकी एक तरह से अल्टरनेटिव तैयार कर सकता है। तो दोनों तरह से पॉजिटिव इंसेंटिवाइजेशन एंड नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करता है चीन।
दरअसल ये बेहद पेचीदा मामला है चीन और ताइवान का। दोनों ही देश खुद को असली चीन कहते हैं। चीन ने ताइवान को हमेशा से एक ऐसे प्रांत के रूप में देखा जो कि उससे अलग तो हो गया है, लेकिन उसकी सोच है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ें इन देशों के अतीत में हैं। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में एडजंक्ट फेलो अतुल भारद्वाज।
इसका इतिहास जाता है चीन की सिविल वॉर जो 1930 के दशक से शुरू हुई। ये चाइनीज की नेशनलिस्ट फोर्सेस कुमिंगतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो जंग थी उसका ये नतीजा है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन की, जिसको माओ लीड कर रहे थे, इस सिविल वॉर में जीत गई, तो जो चीन का जो मेजर हिस्सा था मेनलैंड चाइना का, वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के हाथ में आ गया। तब जो रूलिंग राष्ट्रवादी कुमिंगतांग पार्टी थी वो ताइवान में जाके बस गई। वो तब से लेके अब तक ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है कि कौन एक्चुअली चीन को रिप्रेजेंट करता है। वाजिब सी बात है कि चीन की पॉपुलेशन जो है वो 1.3 बिलियन है और ताइवान बहुत एक छोटा सा देश है एरिया में भी और पॉपुलेशन के हिसाब से।
एक और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी, जिसे आमतौर पर चीन कहा जाता है, वो साल 1949 में बना था। इसमें मेनलैंड चीन और हांगकांग मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। दूसरी ओर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी है, अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह हैं। साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की आजादी का समर्थन किया। ये बात चीन को नागवार गुजरी। दुनिया भर के देश जो कि चीन या फिर ताइवान के साथ संबंध रखते हैं, वो वन चाइना पॉलिसी के आधार पर रखते हैं। तो क्या है ये नीति? अतुल भारद्वाज,
वन चाइना पॉलिसी, इसके तहत चीन कहता है कि चीन में केवल एक सरकार ही है और जो देश चीन की सरकार को वाजिब नहीं मानते उनके साथ, और जो ताइवान की सरकार को मान्यता देते हैं उनके साथ चीन संबंध नहीं रखता है।
दोनों देशों की खींचतान में अमेरिका को ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका व चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया जब साल 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए चीन ने मिसाइल परीक्षण किया। जवाब में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़े पैमाने पर अमरीकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे कि वियतनाम युद्ध के बाद एशिया में सबसे बड़ा अमरीकी सैन्य प्रदर्शन कहा गया। अतुल भारद्वाज,
1979 में अमरीका ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ ब्रेक किए, तोड़े। अमेरिका एक विभाजन क्रिएट करना चाहता था तो उसने चीन के साथ दोस्ती निभाई और उसके तहत ये पॉलिसी को अपनाया, वन चाइना पॉलिसी को। परंतु साथ के साथ ताइवान के साथ उसने रिश्ते रखे, डिफेंस के रिश्ते, कि अगर चीन ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए कोई युद्ध छेड़ता है फौजें तैनात करता है, तो अमेरिका उस हालात में ताइवान को सिक्योरिटी की गारंटी देता है। ट्रंप इलेक्शन के दौर में थे, उस वक्त ट्रंप ने कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब ताइवान की प्रेसिडेंट ने उनको एक कॉल करी जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल कॉल बन गई, तो ये एक डिप्लोमेटिक कू माना जा रहा था उस टाइम पर। फिर ट्रंप ने कॉल करी शी जिनपिंग को, तब ये क्लैरिफाई किया कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं।
अफ्रीका और कैरिबियाई क्षेत्र के कई छोटे देश अतीत में वित्तीय सहयोग के चलते चीन और ताइवान दोनों से बारी बारी से रिश्ते बना चुके हैं और तोड़ भी चुके हैं। ताइवान ओलंपिक खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समारोह में चीन का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसी के चलते वो लंबे समय से ऐसे मंचों पर चाइनीज ताइपे के नाम के साथ शिरकत करता है। पनामा ने तो ताइवान का साथ छोड़ दिया, और अगर इसी तरह दुनिया के बाकी देश भी एक एक करके ताइवान का साथ छोड़कर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते रहे तो फिर ताइवान का भविष्य क्या है? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह,
22 देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस कुछ ही महीनों में वो सब देश बदल जाएंगे और ताइवान अकेला रह जाएगा। हालांकि ये नहीं लगता कि देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को छोड़ के रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान की तरफ झुकेंगे, ऐसा रुझान लगता नहीं इस वक्त। आज देखें, चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक व्यवस्था है, उसकी आर्थिक वृद्धि है, तो उस नजरिए से ताइवान की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक वृद्धि जो है वो खूब अच्छी है और प्रभावशाली है। ताइवान की इन्वेस्टमेंट बहुत से देशों में है, 70 देशों की कमर्शियल रिलेशंस हैं ताइवान के साथ, पर बहुत जल्द ही ताइवान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, जब उसका मर्जर हो जाएगा मेनलैंड चाइना में, ऐसा नहीं कह सकते।
मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
ताइवान के कम होते दोस्त और उसमें चीन की भूमिका पर आधारित दुनिया जहान आप सुन रहे थे, और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं हरिता।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबरों से। जनसत्ता की पहली हेडलाइन है कि दो और किसानों ने जान दे दी है और मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 7 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। द हिंदू ने लिखा है कि इसी पर मरहम लगाने की कोशिश की गई है, केंद्र सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज देने बरकरार रखने की बात कही है, 3 लाख तक के कर्ज पर 4% ब्याज होगा और 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसी पर जो है राजनीति की बात करें तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इटली गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं नानी से मिलने जा रहा हूं। जनसत्ता ने इस पर चुटकी ली और कार्टून बनाया है कि किसान राहुल से कह रहे हैं कि अब नानी के घर ही रह जाना, वापस लौट के मत आना। एक और खबर, जीएसटी जो कि 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है और इस पर जो है नज़रें टिकी हुई हैं भारत में सबकी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बीच न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स बल्कि बाजार में रिटेल दुकानों और बड़े बड़े स्टोर्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल एसेसरीज, कपड़ों और जूतों जैसे कई चीज़ों पर भारी डिस्काउंट और सेल चल रहा है। रिटेलर जो है वो टैक्स बढ़ने की उम्मीद में जो है इनको, इन स्टॉक्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है काफ़ी कई जगह पर सेल और डिस्काउंट चल रहे हैं। द हिंदू ने लिखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई के बजाय 1 सितंबर से जो है जीएसटी को लागू किया जाए। दूसरी बात करें राष्ट्रपति चुनाव की, 17 जुलाई से को राष्ट्रपति चुनाव होना है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि वामपंथी पार्टियां जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष का उम्मीदवार बना सकती हैं, वहीं बीजेपी और जो केंद्र सरकार है वो एक कंसेंसस सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और CPM के नेता सीताराम येचुरी से जो है वो बीजेपी का जो 3 मंत्रियों का दल है वो मिल सकता है, उन्होंने समय मांगा है। दूसरी खबर है विजय माल्या की, जो सारे अखबारों के पहले पन्नों पर मैं देख रही हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि विजय माल्या के प्रत्यार्पण के मामले में उन्हें जो है लंदन की अदालत से राहत मिली है दिसंबर तक, लेकिन बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खबरें चैंपियंस ट्रॉफी से। ये जश्न और शोर शराबा है पाकिस्तानी प्रशंसकों का। कार्डिफ में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को पाकिस्तान ने जो 8 विकेट से मात दी, उसके बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों ने कुछ इसी तरह से जश्न मनाया। जीत के लिए ज़रूरी 212 रन पाकिस्तान ने 8 विकेट खोकर बना लिए और फाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद मैंने वहां मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता खालिद करामत से बात की और पूछा कि पाकिस्तानी प्रशंसकों के बीच जीत के बाद किस तरह का माहौल था।
पाकिस्तानी फैंस उम्मीदें तो बहुत लगाकर आए थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी परफॉर्मेंस देखेंगे। अच्छा, मैच के फौरन बाद मैंने पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली से बात की और मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, आपकी टीम ने क्या जादू की छड़ी चलाई कि जो है टीम इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद ऐसी मजबूत और क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी। तो उन्होंने कहा कि असल में जो मैनेजमेंट है, जो कप्तान है, जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने सबसे अहम चीज जो की वो ये की कि उन्होंने खिलाड़ियों पर यकीन किया, उन पर बिलीव किया, उन पर पूरा भरोसा किया कि इनमें इतना एतमाद है कि ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं।
और बहुत लंबे समय बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो उनका मजबूत पक्ष समझी जाती थी वो क्लिक कर गई, उस पर क्या कहेंगे आप?
हाँ देखिए, बॉलिंग ही इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में टीम की स्ट्रेंथ रही है। बैटिंग तो कम्प्लीटली कोलैप्स हुई है, बार बार मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है पाकिस्तान की टीम में। मेरी रमीज राजा वगैरह से भी बात हुई, उन्होंने भी जिक्र किया कि टीम में पावर हिटिंग की कमी है, उनके पास विराट कोहली, युवराज, शिखर धवन, रोहित जैसे बल्लेबाज नहीं है और पावर हिटिंग की मॉडर्न गेम में बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब से ये नए खिलाड़ी फखर जमान टीम में आए हैं, बाकी खिलाड़ियों को भी जरा हौसला मिला है कि वो उनसे इंस्पिरेशन लें, उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट दिए हैं टीम को।
जी, और खालिद, हम वहां से देख पा रहे थे, जैसा कि आप लोग इन्फॉर्म कर रहे थे, कि वहां पे बड़ी तादाद में भारतीय फैंस भी थे जो पाकिस्तान को चीयर कर रहे थे, ऐसा था क्या?
बिल्कुल ऐसा था। जब मैं खुद भी हैरान हुआ जब सुबह मेरी इंडियन फैंस से मुलाकात हुई, क्योंकि हमें बताया भी गया था कि ज्यादातर टिकट इंडियन फैंस के पास हैं, तो उनमें से अक्सर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान ही ये मैच जीते, हालांकि उनमें से काफी सारे इंडियन नजाद बरतानवी थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच जीते, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि फाइनल जो है इंडिया पाकिस्तान का हो और वो एक ऐसा फाइनल होगा जो शायद जो है किसी भी और बड़े मैच को आसानी से मात दे दे।
हमें ये बताएं कि अगर मान लीजिए भारत फाइनल में पहुंच जाता है और भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल होता है, तो ग्राउंड में किस तरह का माहौल आप देखना एक्सपेक्ट करते हैं और क्या वहाँ पे भी इस तरह का तनाव और टेंशन दोनों फैंस के बीच में होता है?
मुझे लगता है कि शायद ना हो। अगर आज के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो अक्सर इंडियन फैन हाथ में हाथ डाले पाकिस्तानी फैन के साथ खड़े तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो माहौल अच्छा है। हाँ, जो एक गेम की जो दोनों में टेंशन होती है वो जरूर होती है, लेकिन वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो, लेकिन वो भी अच्छे स्पिरिट में होती है, चैंटिंग होती है, एक दूसरे के नारे लगाए जाते हैं और ये है कि अपनी टीम को सपोर्ट ज्यादा किया जाता है ऑब्वियसली।
ये थे बीबीसी उर्दू के संवाददाता खालिद करामत जो बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच की। आज चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल है जिसमें भिड़ेंगे भारत और बांग्लादेश, और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी। तमाम प्रशंसक चाह रहे हैं भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो, लेकिन बांग्लादेश को भी हल्के में लेना भारत के लिए भूल होगी, क्योंकि 2007 के विश्व कप में आपको याद होगा कि बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बहुमंजिला इमारत ग्रेनफेल टावर में लगी आग में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी के डिपो में गोलीबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। यूपीएस के प्रवक्ता ने बताया है कि एक कर्मचारी ने ही अपने साथी कर्मचारियों पर गोलियां चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। अमेरिका के वर्जीनिया में बास्केटबॉल के एक अभ्यास मैच के दौरान एक टॉप रिपब्लिकन सांसद और उनके सहयोगियों पर गोलियां चलाने वाले संदिग्ध हमलावर जेम्स हॉजकिंसन को भी मार गिराया गया है। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे दीजिए तमाम साथियों के साथ इजाजत। नमस्कार।